होटल की चमक दमक पीछे छूट चुकी थी। कार जैसे ही पोर्टिको से बाहर निकली, मुंबई की रात फिर अपने असली रंग में लौट आई। सड़क किनारे पीली स्ट्रीट लाइट्स, दूर समंदर की तरफ जाती हवा और शीशों से टकराकर अंदर आती हल्की सी ठंडक। ड्राइवर ने बिना पूछे एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी नहीं कि बोलने को कुछ ना हो, बल्कि ऐसी जिसमें बहुत कुछ बोलना था। शामली खिड़की से बाहर देख रही थी। लाइट्स उसके चेहरे पर आती जाती रहीं, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। होंठ हल्के से खुले, जैसे कुछ कहना चाहती हो और फिर हर बार खुद को रोक लेती हो। विश्वनाथ ने ये सब देख लिया था। उसकी आदत थी बोलने से पहले देखना। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने बिना उसकी तरफ मुड़े कहा, कुछ कहना है? उसकी आवाज में ना नरमी थी ना सख्ती, बस वही सीधा सवाल जो बच निकलने की गुंजाइश नहीं छोड़ता। शामली हल्की सी चौंकी, फिर तुरंत खुद को संभाल लिया। नहीं, वो बोली, बिल्कुल भी नहीं। एक पल रुकी, फिर जैसे खुद ही अपनी बात को अधूरा छोड़ना उसे मंजूर ना हुआ, हाँ, वो जो लड़की थी ना, जो आपके साथ डांस कर रही थी, उसने जानबूझकर आवाज हल्की रखी, वो बहुत खूबसूरत थी, है ना? ये सवाल नहीं था, ये जैसे किसी बंद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक थी। विश्वनाथ ने भौहें जरा सी उठाई, नजर अभी भी सड़क पर थी। मन ही मन मुस्कुरा उठा, अच्छा तो मैडम को जलन हो रही है, लेकिन साफ साफ कहना अब भी गवारा नहीं। उसने कुछ नहीं कहा। कार के इंजन की आवाज, बाहर दौड़ती गाड़ियों का शोर, सब कुछ उसी खामोशी को और गाढ़ा कर रहा था। क्या हुआ? शामली ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपने कुछ कहा नहीं? अब विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा, सिर्फ एक नजर, फिर बहुत सहजता से बोला, हाँ थी तो, बस इतना कहकर रुका, जैसे जानता हो इतना कहना ही काफी है। लेकिन फिर उसने जानबूझकर बात आगे बढ़ाई। बहुत कॉन्फिडेंट थी, उसने कहा, लोगों से बात करना जानती थी, अपने आप को कैरी करना आता था। शामली का जबड़ा हल्का सा कस गया, विश्वनाथ ने नोटिस किया और मन ही मन और खुश हुआ। और सबसे बड़ी बात, वो शांत आवाज में बोलता गया, उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन है, वो बस खुद थी। शामली ने खिड़की की तरफ देखा, उंगलियां सीट के किनारे पर सिमट गईं। तो फिर, वो अचानक चिढ़ते हुए बोली, आपको उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी? कार के अंदर हवा जैसे एक पल को जम गई। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से झटपट नजर हटाई। विश्वनाथ ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने हल्की सी सांस ली, फिर बहुत सामान्य सी आवाज में बोला, पहले मिलती, उसने कहा, तो जरूर कर ही लेता। शामली ने उसकी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा था और कहीं ना कहीं चोट। विश्वनाथ ने बात जारी रखी, वैसे भी, वो बोला, वो मेरी उम्र के हिसाब से ठीक थी। तुम, उसने एक पल रुककर उसे देखा, तुम मेरे हिसाब से बहुत छोटी हो। शामली की सांस अटक गई। ऐसे में तालमेल बिठाना, वो शांत स्वर में बोला, काफी मुश्किल होता है। शामली अब पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। ओ, उसने कटाक्ष से कहा, तो ये सब मेरा ही कसूर है? विश्वनाथ ने कंधे उचका दिए। मैंने कब कहा कसूर है? वो बोला, मैं तो बस फर्क बता रहा हूँ, फिर जैसे नमक छिड़कना जरूरी हो। वो मैच्योर थी, उसने कहा, बातों में ठहराव था, बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती थी। शामली अब सच में चिढ़ चुकी थी। वाह, वो तन से बोली, आप तो पूरी लिस्ट ही बना चुके हैं। विश्वनाथ ने बिना किसी झिझक के कहा, लोगों को ऑब्जर्व करना मेरी आदत है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शामली की चिड़चिड़ाहट उसे बेहद प्यारी लग रही थी। वो जो हमेशा खुद को छोटा रखती थी, आज पहली बार खुद को जाहिर कर रही थी, और ये बात विश्वनाथ को अंदर तक संतुष्ट कर रही थी। आपको बहुत मजा आ रहा है ना, शामली ने अचानक कहा। विश्वनाथ ने उसे देखा, फिर बहुत धीमे से मुस्कुराया, थोड़ा सा। शामली ने मुंह फेर लिया। एयरपोर्ट आने में कितना टाइम है? उसने ड्राइवर से पूछा। लगभग 20 मिनट मैडम, ड्राइवर ने जवाब दिया। शामली ने आंखें बंद कर ली। सीने में अब भी वही कसाव था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी था, एक खिंचाव, एक अजीब सी बेचैनी। तभी कार को अचानक एक तेज झटका लगा, ब्रेक जोर से लगे। शामली आगे की तरफ झुकी। विश्वनाथ ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। सब ठीक है? उसकी आवाज अब गंभीर थी। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई। सर, सामने अचानक गड्ढा था, वो बोला, नजर नहीं आया। शामली की सांस तेज थी, उसका हाथ अभी भी विश्वनाथ की पकड़ में था। वो पल छोटा सा था, लेकिन काफी कुछ बदल देने वाला। कार सड़क के किनारे खड़ी थी। मुंबई की रात चारों तरफ फैली हुई, और उन दोनों के बीच अब खामोशी नहीं थी, कुछ और था, कुछ जो अभी शब्दों में नहीं आया था। कुछ देर बाद कार सड़क के किनारे खड़ी थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कार की बोनट पर अटकी हुई थी। ड्राइवर नीचे उतरा, एक नजर इंजन की तरफ देखी, फिर सिर हिलाया। सर, उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, कार में कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद सेंसर या बेल्ट का इशू है, 2 मिनट देखना पड़ेगा। शामली का दिल बैठ सा गया। उसने तुरंत घड़ी देखी, फिर सड़क की तरफ, फिर वापस ड्राइवर की तरफ। फ्लाइट छूट गई तो?
उसकी उंगलियां अपने आप पर्स पर कस गईं। कितना टाइम लगेगा? उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। ज्यादा नहीं मैडम, ड्राइवर बोला। बस देख रहा हूँ। ड्राइवर बोनेट खोलकर झुक गया। शामली सीट से उठी, कार से बाहर आ गई। हवा में अब समंदर की नमी थी और उसके साथ चिंता भी। वो सड़क की तरफ दो तीन कदम चली, फिर पलटकर विश्वनाथ को देखा। वो भी बाहर आ चुका था। कोट उतारकर उसने उसे एक हाथ पर लटका रखा था। शर्ट की बाहें कोहनी तक चढ़ी हुई, पैंट की क्रीज अब भी उतनी ही सधी हुई। वो बस वहीं खड़ा था, बेहद आराम से, जैसे न फ्लाइट का सवाल हो न देर का। शामली के भीतर छुंचलाहट उभरी। पता नहीं ये मिस्टर खुद को समझते क्या है। वो मन ही मन बड़बड़ाई, इतनी देर हो रही है और इन्हें जरा भी फर्क नहीं। कैसे स्टाइल से खड़े हैं, जैसे किसी एड का सीन चल रहा हो। वो फिर घड़ी देखने लगी। आपको टेंशन नहीं हो रही? वो आफिन बोल ही पड़ी। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा, फिर सड़क के उस सिरे की तरफ जहाँ गाड़ियाँ आराम से गुजर रही थी। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, हो जाएगी, बस इतना, ना तसल्ली ना सफाई। शामली ने होंठ दबा लिए। ड्राइवर ने कुछ तार ठीक किए, हाथ पोंछे और बोनेट बंद किया। सर अब ठीक है, उसने कहा। विश्वनाथ ने सिर हिलाया। शामली ने राहत की सांस ली। दोनों वापस कार में बैठे। इंजन स्टार्ट हुआ साफ, बिना किसी अटकन के। कार फिर से सड़क पर बढ़ चली, एयरपोर्ट की दिशा में। शामली सीट से टिक गई। दिल अब भी हल्का सा तेज धड़क रहा था और विश्वनाथ, वो पहले की तरह बेफिक्र था।